नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर आज चर्चा होगी। सरकार ने तेल रिफाइनरियों को घरेलू उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और वित्तीय बाजारों में बढ़ती अस्थिरता के बीच सभी ने निवेशकों से संयम बरतने की अपील की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के खिलाफ युद्ध अल्पकालिक हो सकता है, लेकिन ये भी संकेत दिया कि वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित होने पर लड़ाई और तेज हो सकती है। और हैदराबाद में FIH महिला हॉकी विश्व कप 2026 क्वालिफायर में स्कॉटलैंड और भारत के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। ये प्रस्ताव कांग्रेस के 3 सदस्यों मोहम्मद जावेद, के सुरेश और मल्लू रवि द्वारा पेश किया जाएगा। यदि प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो श्री बिरला कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं करेंगे बल्कि सदस्यों के बीच बैठेंगे। पश्चिम एशिया पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कल अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव नहीं लिया गया। इस बीच राज्यसभा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा जारी रहेगी। उच्च सदन में ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा होनी है। सरकार ने तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ये कदम ईंधन आपूर्ति में मौजूदा भू राजनीतिक तनाव और एलपीजी आपूर्ति पर लगी पाबंदियों के मद्देनजर उठाया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता दी है, साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सिलेंडर की 2 बुकिंग के बीच का अंतर बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए संसद के दोनों सदनों में संवाद और कूटनीति को महत्वपूर्ण बताया। डॉक्टर जयशंकर ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर लोकसभा में कहा कि सरकार ने पिछले महीने की 20 तारीख को स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया था और सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया था। विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार उभरते घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं। वहीं राज्यसभा में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ने इस वर्ष जनवरी में ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी थी और उनसे भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराने तथा उचित सावधानी बरतने को कहा था।
इंडिया इज इन फेवर ऑफ पीस।
भारत शांति के पक्ष में है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से तनाव कम करने का आग्रह करता है। हम संयम बरतते हुए नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के पक्ष में हैं। क्षेत्र में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए हम क्षेत्र के देशों की सरकारों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। हमारे लिए ऊर्जा, सुरक्षा और व्यापारिक हित सहित राष्ट्रीय हित हमेशा सर्वोपरि रहेगा। मुझे विश्वास है कि इस मुद्दे पर सरकार को इस सदन का पूरा समर्थन प्राप्त है।
डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अब तक लगभग 67,000 भारतीय नागरिक देश लौट चुके हैं। कतर में भारतीय दूतावास ने बताया है कि दोहा में अल्पकालिक यात्रा पर फंसे लगभग 1,000 भारतीय पिछले 3 दिनों में कतर एयरवेज की उड़ानों से भारत लौट चुके हैं। दूतावास के अनुसार कतर एयरवेज आज दिल्ली, मुंबई और कोची के लिए 3 उड़ानें संचालित करेगी। साथ ही बताया गया है कि सऊदी वीजा का अनुरोध करने वाले यात्रियों के मामलों को भी देखा जा रहा है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वित्तीय बाजारों में बढ़ती अस्थिरता के बीच सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे ने निवेशकों से संयम बरतने की अपील की है। मुंबई में निफ्टी 50 के 30 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री पांडे ने कहा कि भारत के घरेलू बुनियादी ढांचे मजबूत बने हुए हैं जो ऐसी अनिश्चितताओं के बीच दृढ़ता प्रदान करते हैं। श्री पांडे ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण प्रमुख शिपिंग मार्गों में व्यवधान और तेल एवं गैस आपूर्ति में अचानक आई रुकावटों से वैश्विक बाजार वर्तमान में उथल पुथल का सामना कर रहे हैं, जिससे आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों में बाधा उत्पन्न हो रही है। ईरान के साथ अमेरिका इसराइल के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आया है। इस स्थिति को देखते हुए G7 देशों ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की तत्परता जताई है। हालांकि G7 वित्त मंत्रियों और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की बैठक रणनीतिक कच्चे तेल भंडार को जारी करने के समझौते के बिना समाप्त हो गई। बैठक में भंडार से तेल जारी करने के विकल्प पर कई चर्चाएं हुई। बैठक के बाद G7 देशों ने कहा कि वे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को समर्थन देने के लिए भंडार से तेल जारी करने जैसे आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार हैं। वैश्विक बाजार में आज कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड लगभग 8.5% गिरकर $92.50 प्रति बैरल पर आ गया। वहीं अमरीकी बाजार में भी तेल की कीमत लगभग 9% गिरकर $88.60 प्रति बैरल के आसपास हो गई। हालांकि कीमतें अभी भी संघर्ष की शुरुआत में मौजूद कीमतों से लगभग 30% अधिक हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के विरुद्ध युद्ध की अवधि कम हो सकती है। वहीं उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक द्वारा वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में युद्ध तेज होने की संभावना का विकल्प खुला रखा। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध बहुत जल्द समाप्त होगा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने पर्याप्त जीत हासिल नहीं की है और वो निर्णायक विजय का लक्ष्य बना रहा है।
हमने कई तरीकों से जीत हासिल कर ली है, लेकिन अभी वो काफी नहीं है। हम इस पुराने खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने और आखिरी जीत पाने के लिए पहले से भी ज्यादा संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 47 साल हो गए, ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। अगर किसी राष्ट्रपति ने साहस दिखाया होता और उन्होंने ये काम किया होता तो दुनिया आज कुछ और ही होती। उन्हें ये कई कई बार करना चाहिए था। अब हम इन दुष्ट आतंकवादियों और सिरफिरे लोगों से और ज्यादा नहीं डरेंगे। हम ऐसा होने नहीं दे सकते।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत कर ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल युद्ध और यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा की। पुतिन के सलाहकार यूरी उशाकोव ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। दिसंबर के बाद ये उनकी पहली बातचीत थी और इस चर्चा का अनुरोध अमरीका की ओर से किया गया था। उशाकोव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल युद्ध के शीघ्र राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत का रचनात्मक अर्थव्यवस्था क्षेत्र विश्व के लिए देश की संस्कृति, खाद्य और सीधे स्थानीय विक्रेताओं या आसपास के उत्पादकों से मिलने वाली ताजा वस्तुओं का प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति संबंधी विषय पर आयोजित बजट पश्चात वेबिनार में कल ये बात कही। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रौद्योगिकी मीडिया मनोरंजन के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभा रही है।
आज का जो एंटरटेनमेंट और मीडिया की दुनिया है, इस दुनिया में टेक्नोलॉजी का जो उपयोग, अब इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, इसका पहला कैंपस मुंबई में बन रहा है। इस टेम्परेरी कैंपस में जो फैसिलिटीज बनी, जो ये ऐसे इंस्टीट्यूशनल चेंज है जो कि हमारे देश के युवाओं को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देती है, जहां से स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ सके और एकदम रेलेवेंट फील्ड में वो अपने को एक्सपर्ट बना के मार्केट में, दुनिया में अपनी पहचान बना सके।
श्री वैष्णव ने कहा कि इस क्षेत्र का नेतृत्व करने में भारतीय सृजकों की सहायता के लिए वेव्स मंच का निर्माण किया गया है। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वेबिनार में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समावेशी और सुलभ शिक्षा को बढ़ावा देती है।
आज जिस प्रकार की पैनल ने इतने बड़े पैमाने पर सुझाव दिया है, चर्चा किया है, विषय को नीचे लेने की प्रयास किया है, उस दिशा में हमने एक वन स्टेप अहेड लिया है। लेकिन मेरा अपेक्षा रहेगा ये सब विषय ई एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंटरप्राइज ट्रिपल ई से लेके टेलीस्कोपिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी तक सारा विषय संलग्न है। आज देश में लड़कियां स्टेम एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं, उनकी रिसर्च में आगे हो रहा है। ये सारे को आने वाले निर्दिष्ट समय में हमने कैसे अप्रैल अनुवार इसको ऑन फील्ड उतारेंगे, इस वेबिनार की सार्थकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल केरल और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। दोपहर में प्रधानमंत्री केरल के एर्नाकुलम में लगभग 10,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में लगभग 5,650 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल चुनाव में जीत के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने और आरएसपी के वरिष्ठ नेता बालेंद्र शाह को बधाई दी है। टेलीफोन पर हुई बातचीत में प्रधानमंत्री ने आगामी नई सरकार के लिए शुभकामनाएं दी और दोनों देशों की आपसी समृद्धि, प्रगति और कल्याण के लिए एक साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2026 क्वालिफायर में भारत और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। हैदराबाद में हुआ ये मुकाबला महिला हॉकी विश्व कप के 2 क्वालिफाइंग टूर्नामेंटों में से एक था। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट में भारत की ओर से HS प्रणय और किदांबी श्रीकांत चुनौती पेश करेंगे। एक रिपोर्ट।
सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स में भारत का नेतृत्व करेंगे। मिक्स्ड डबल्स में अमर अर्जुन और ध्रुव कपिला भी सात्विक चिराग के साथ खेलेंगे। इसके अलावा पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से किदांबी श्रीकांत, एचएस प्रणॉय, आयुष शेट्टी और किरण जॉर्ज से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। महिला सिंगल्स में भारत की उम्मीदें मालविका बंसोड़ और उन्नति हुडा पर रहेंगी। वहीं क्वालिफायर से खेलने वाली तन्वी शर्मा और अनमोल खरब भी अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगी। जबकि मिक्स्ड डबल्स में भारत की ओर से ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की जोड़ियां हिस्सा लेंगी। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद भारत की इकलौती जोड़ी होंगी। समाचार कक्ष से जया भारती।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
धन्यवाद फरहत। अमरीका ईरान युद्ध के चलते शेयर बाजार में भारी गिरावट का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बना हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, सेंसेक्स जमीन, क्रूड आसमां की ओर, सरकार बोली महंगाई बढ़ने की आशंका नहीं। जनसत्ता की खबर है, कच्चा तेल $100 पार, शेयर बाजार धड़ाम। जबकि दैनिक भास्कर के शब्द हैं, दुनिया में तेल संकट, पाक बांग्लादेश हांफने लगे और भारत बोला यहां कमी नहीं। लोकसत्ते ने विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारतीयों की सकुशल वापसी ही पहली प्राथमिकता। भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक, यूक्रेन पहले नंबर पर, यह है अमर उजाला की सुर्खी। अखबार लिखता है, पिछले 5 साल में 8.3% रही वैश्विक हिस्सेदारी, रूस नंबर एक पार्टनर। रेलवे स्टेशनों पर अब किए जाएंगे इंसानी रोबोट तैनात, 24 घंटे बगैर रुके कर सकता है ये पेट्रोलिंग, ये है हिंदुस्तान की खबर। और दैनिक जागरण ने पिछले कुछ दिनों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एनसीईआरटी कक्षा 8 की एक पुस्तक को प्रतिबंधित करने को अपने संपादकीय पन्ने पर दिया है। शीर्षक है, तूल न दें एनसीईआरटी की भूल को। अखबार लिखता है, एनसीईआरटी ने केवल न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार पर पाठ लिखकर भूल की है, लेकिन भूल करना कोई अपराध नहीं है। 5 शावकों के जन्म से देश में चीतों की संख्या हो गई है 53। नामीबिया से लाई गई ज्वाला तीसरी बार बनी मां, चीता पुनर्वास परियोजना की बड़ी सफलता, यह है जनसत्ता की खबर। और नवभारत टाइम्स ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ती तपिश का समाचार दिया है, 3 दिनों से तापमान 35 डिग्री से ज्यादा। पत्र लिखता है, प्रदूषण में आई कमी, खराब स्तर पर ही रहा प्रदूषण।
धन्यवाद मुनीश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर आज चर्चा होगी। सरकार ने तेल रिफाइनरियों को घरेलू उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और वित्तीय बाजारों में बढ़ती अस्थिरता के बीच सेबी ने निवेशकों से संयम बरतने की अपील की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के खिलाफ युद्ध अल्पकालिक हो सकता है, लेकिन ये भी संकेत दिया कि वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित होने पर लड़ाई और तेज हो सकती है। और हैदराबाद में FIH महिला हॉकी विश्व कप 2026 क्वालिफायर में स्कॉटलैंड और भारत के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।